राधे राधे। मेरा नाम है अमित सैनी और स्वागत है आप सभी लोगों का द एंडलेस एनर्जी जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो हम बात करेंगे आज अपने एपिसोड 2 के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ मेडिटेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी सीरीज़ का नाम है अंडरस्टैंडिंग थ्रू साइंस। इस सीरीज़ में अगला एपिसोड मेडिटेशन के बारे में द पावर ऑफ मेडिटेशन। मित्रों जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस अवस्था में होते हैं जिस अवस्था में हम अपने आप को अपने बारे में जानते हैं तथा जानने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में हम धीरे 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 अपने आप को जानने लगते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन तुम कौन हो। अर्जुन उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। कभी वो कहते हैं मैं मानव हूँ, कभी वो कहते हैं मैं अर्जुन हूँ, कभी वो कहते हैं मैं योद्धा हूँ। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मानव होना तुम्हारा धर्म है, योद्धा होना तुम्हारा कर्तव्य है, अर्जुन तुम्हारा नाम है, अर्थात तुम असल में कोई भी नहीं हो। तुम जो खुद नहीं जानते वो मैं हूँ। मैं यानी कि भगवान, मैं यानी कि अननोन एनर्जी, मैं यानी कि इनफाइनाइट एनर्जी, मैं यानी कि एंडलेस एनर्जी। तो हमारे इस सीरीज एंडलेस एनर्जी में यही हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि व्हाट इज़ द रियल एंडलेस एनर्जी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ऊर्जा हूँ, मैं ही ऊर्जाओं का स्रोत हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ। मानव में विद्यमान प्रत्येक शारीरिक क्रियाओं का मैं ही तो, सिर्फ मैं, और मेरे होने से ही ये संसार, ये प्रकृति, मनुष्य, पशु, जीव, पेड़, पत्ते आदि सभी मेरे होने से ही, अर्थात मेरा ही इस जग में शुरुआत है और मेरे से ही इसका अंत है तथा मेरा कोई अंत नहीं है, न मेरी शुरुआत है न मेरा अंत। मैं अछूता हूँ और अमर हूँ। श्री कृष्ण अपने बारे में ये कहते हैं जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो एक ऊर्जा है। आज हम बताएंगे उसी ऊर्जा को जानने का रहस्य द मेडिटेशन, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जिससे हम अपने आप को जानने के बारे में और ज़्यादा लालसाएं हम करते हैं और हम अपने बारे में अपने आप को जान पाते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम धीरे धीरे उस ऊर्जा को महसूस करते हैं अपने अंदर, अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने टिश्यूज में, अपने तत्वों में, अपनी इंद्रियों में, अपने ज्ञानेंद्रियों में, अपनी प्रत्येक चीज़ में हम उस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं हमारी आँखें बंद, सांसें खुली हुई, हमारा दिमाग खुला हुआ तथा हमारे सारे सरंध्र खुले हुए होते हैं। उन सरंध्रों से हमारे सराउंडिंग एक ओरा क्रिएट हो जाता है। ओरा का मतलब है एक ऐसी एनर्जी का आइसोलेशन, जिस तरह से किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है करंट फ्लो करने में, उसी प्रकार एक ओरा क्रिएट हो जाता है जब हम उस एनर्जी रूप करंट को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करेंगे। वो दिखता तो नहीं है परंतु महसूस होता है आपको नहीं आपके आसपास वालों को। उस ओरा के कॉन्टैक्ट में आते ही प्रत्येक नेगेटिव वस्तु, प्रत्येक नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है, अर्थात नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती। पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए तथा उस एनर्जी को अपने अंदर समानित करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान की स्थिति हमें अपने बारे में जानने के साथ साथ
उस एनर्जी को जानने का मौका देती है जिसे स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन से स्वयं ये कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सभी जीवों के उत्पन्न और अंत का मूल कारण हूँ। अर्थात जिस धारणाओं को हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिखिज्म, क्रिश्चियन एंड नॉन रिलीजियस जो भी लोग गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह आदि मानते हैं, वो एक पॉइंट एनर्जी है जिसको स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि वो मैं हूँ। तुम्हारे मानने के रूप अलग अलग हो सकते हैं मगर मूल रूप मैं हूँ। वही मूल रूप को जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। दोस्तों, मंदिरों में हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, डिवोशन, ये सब भगवान को जानने की एक प्रक्रिया है, लेकिन ये सगुण भक्ति कहलाती है। सगुण भक्ति में क्या होता है, हम भगवान को अपने पास, अपने समीप महसूस कर पाते हैं तथा हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। परंतु जब हम निर्गुण भक्ति करते हैं, यानी कि किसी मूर्ति पूजा का हम पालन नहीं करेंगे, किसी एक रूप की हम पूजा नहीं करेंगे, ना हम घंटियाँ बजाएंगे, ना हम आरती गाएंगे, हम केवल ध्यान मग्न होकर एक रूप निराकार ईश्वर का ध्यान करेंगे। निराकार से मेरा मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है। आप जब ध्यान करोगे तो किसी प्रभु या भगवान की आकृति अपने ध्यान में नहीं लाओगे, आप केवल एक पॉइंट एनर्जी को ध्यान में लाओगे। जब हम आंखें बंद करते हैं तो चारों तरफ अंधकार होता है, परंतु एक सूक्ष्म रोशनी छोटी सी प्रज्वलित रहती है आपके चित्त में। वही रोशनी आपको आपका मार्गदर्शन कराती है, आपको खुद से मिलाने में। जब हम खुद से मिलने लगते हैं, धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हम कौन हैं। उसके बाद हमें समझ में आता है हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ और आगे हमें क्या करना है। हम धीरे धीरे मोह माया के बंधन से मुक्त होने लगते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन अपने आप से करने लगते हैं, हमें अपने कर्तव्यों की सीख और समझ हो जाती है और हम निर्गुण निस्वार्थ भावना से अपना कर्तव्य करते हैं। ना किसी फल की इच्छा होती है, ना किसी के छोड़ने का गम होता है, ना किसी चीज़ को पाने की लालसा होती है, ना कोई दुख होता है, ना कोई अत्यंत सुख होता है, सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि परम पीर, परम योद्धा और सिद्ध पुरुष वही कहलाता है जिसको किसी चीज़ का मोह नहीं है। जो संसार में मोह को त्यागे वही सिद्ध पुरुष कहलाता है और वो मृत्यु के बाद मेरे परम काम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का परम धाम यानी कि वैकुंठ धाम, हिंदू धर्म के अनुसार वैकुंठ धाम को श्री कृष्ण का परम धाम कहा गया है, जहाँ पर स्वर्ग से भी अत्यंत सुख प्राप्त होता है। परंतु हम जब सुख की कामना ही नहीं करेंगे तो हमें वैकुंठ धाम के लिए कोई लालसा नहीं करेगी। मृत्यु के बाद मनुष्य परम धाम तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस मृत्यु लोक यानी कि धरती पर वापस नहीं आएगा। वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात उसको वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना होता है अपने कर्मों के अनुसार। अर्थात स्वर्ग से भी ऊपर अगर कोई चीज़ है तो है श्री कृष्ण का परम धाम यानी कि वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धियाँ प्राप्त की, परंतु कुछ भी उसे प्राप्त कर पाए तथा कुछ विफल हो गए। स्वर्ग सभी को मिला। स्वर्ग में सुख भोगने के बाद वो मृत्यु लोक को वापस से जन्म लिए और मृत्यु लोक की मोह माया में फंस कर रह गए। उनका जीवन मरण का चक्र फिर से शुरू हो गया। अर्थात इस चक्र से आज़ाद होने के लिए हमें चाहिए कि हम वैकुंठ धाम में जाएं, और उसके लिए हमें चाहिए कि हम सारे कर्मों से, सारे पापों से मुक्त हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कर दें हर चीज़ से, हर कर्तव्य से, हर किसी समस्या से। कर्तव्य से आज़ाद होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, आप साधु बन जाइए। साधु भी काम करता है। श्री कृष्ण ने भी खुद कहा है
कि हे अर्जुन, मैं इस धरती पर जन्म लेकर अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो मनुष्य का धर्म उसका काम उसका कर्तव्य है और मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, परंतु मैं उस कर्तव्य के फल की इच्छा नहीं रख रहा हूँ, यही निष्फल कर्तव्य है। तो इसी प्रकार से हमें कर्तव्य करना है उसके फल की इच्छा के बिना, तभी हमें उसका पूर्ण तरह से लाभ मिलेगा। उस कर्तव्य को तुम्हारे चित्त में उतारने वाले तुम खुद हो। अब मैं आपको समझाता हूँ साइंस क्या टीच, जैसे कि हमारी सीरीज का नाम अंडरस्टैंडिंग गॉड थ्रू साइंस। गॉड को हम समझ लिए, ध्यान हमने किया, हमने अपने आप को समझा, भगवान को समझा। मैंने आपको अभी तक बताया कि श्री कृष्ण क्या है, क्यों कहते हैं, क्यों हमें ये करना चाहिए। साइंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक विषय है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब भी कोई दो सूक्ष्म पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो वो एक विस्फोट करते हैं और उस एनर्जी को पूरे स्पेस में फैला देते हैं। इसी प्रकार जो एनर्जी बिग बैंग के समय पर फैली थी उसी से ब्रह्मांड बना, यानी कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक अति सूक्ष्म पॉइंट था जिसमें एनर्जी इनफाइनाइट थी, जिसका मास वजन इनफाइनाइट था, जिसका स्पेस यानी कि उसकी दूरी उसकी लंबाई चौड़ाई शून्य थी। एक विस्फोट हुआ और वो फटने के बाद सारा ब्रह्मांड क्रिएट हो गया। जो उसका इनफाइनाइट मास था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया छोटे छोटे मास में, प्लैनेट्स बने, तारे बने, सूर्य बने, चंद्रमा बने और बहुत सारे पार्टिकल्स बने। इसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना। अब शुरुआत में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि ब्रह्मांड में एक पॉइंट एनर्जी थी जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। उसी पॉइंट एनर्जी की श्री कृष्ण बात करते हैं कि वो मैं हूँ जिससे सभी का अंत आदि तथा आरंभ होता है। वही पॉइंट एनर्जी की मैं बात करता हूँ जब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान हमें खुद से मिलाने के साथ साथ प्रभु को जानने में तथा इस प्रकृति को जानने में, इस ब्रह्मांड को जानने में हमारी सहायता करती है। सदियों से साइंटिस्ट इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश में लगे हैं। कुछ इंजीनियर्स आगे पृथ्वी को चलाने के लिए इस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस प्रकार वायुयान, इस प्रकार के नए नए स्मार्टफोन गैजेट्स बनाए हैं जिन्होंने, परंतु कुछ वैज्ञानिक हमेशा इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कहाँ से और किस प्रकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। साइंस कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जान लेना ही परम ज्ञान है। और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य को परम ज्ञान हो जाता है वो मृत्यु लोक से आज़ाद हो जाता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अर्थात इस धरती लोक से मृत्यु के बाद वो श्री कृष्ण के परम धाम पहुँच गए। इसी प्रकार जब कोई वैज्ञानिक या कोई भी मनुष्य अपने साइंस के थ्रू या फिर मनुष्य अपने ध्यान के थ्रू परम रहस्य को जान लेता है वो इस धरती लोक से आज़ाद हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो उसकी मृत्यु हो जाती है और वो परम धाम प्राप्त हो जाता है। उसकी आत्मा जो कि उस इनफाइनाइट एनर्जी में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी आत्माएं मिलकर एक इनफाइनाइट एनर्जी को निर्माण करती हैं जो कि अनंत है, जिसका आकार रूप सब कुछ अनंत है। ये इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर मास है कि इसकी कल्पना कर पाना मनुष्य के लिए संभव क्या है, इस बारे में बात करना ही हमारे लिए संभव है। इस प्रकार मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया सारे मनुष्य के दिमाग को एक साथ रख के कल्पना की जाए तो भी अच्छा ठीक किसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ द पावर ऑफ मेडिटेशन जो कि कहता है जो कि दावा करता है अपने आप से प्रभु से और ब्रह्मांड की प्रकृति की रहस्य को आपको तलाश में श्री कृष्ण ने अभी गीता में कहा है कि ध्यान ही आदमी को परम ज्ञान का ध्यान से ही ज्ञान है ध्यान से ही मान है ध्यान से सम्मान है ध्यान ही सब कुछ है जब हम ध्यान में होते हैं तभी हम उस एनर्जी को देख पाते हैं जिससे सारे संसार की रचना हर किसी चीज़ की उत्पत्ति एनर्जी से हुई है वो एनर्जी हमें केवल और केवल ध्यान से ही प्राप्त हो सकती है। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठ के हमेशा ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं रहते हैं क्यों वो ध्यान करते हैं ध्यान के पल पर वो अपने डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइंस की तरफ स्विच करूँगा तो आप समझें थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँगा क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब प्रभु ध्यान करते हैं भोलेनाथ तो वो अपने आकार को सूक्ष्म और अति सूक्ष्म बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन वो हमारे कंट्रोल में होता है। जब हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में होगा तो हम हर दर्द को सहने की क्षमता रखेंगे हमें कोई दर्द नहीं होगा। हम अगर अपने उंगली को काट देंगे तो हमें कोई दर्द नहीं होगा। बायोलॉजी के अनुसार जब छिपकने की पूंछ कटती है तो छिपकने की पूंछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से एक निश्चित जीन उसका होता है उस स्पेशी का जिसकी वजह से पूंछ पुनः वापस आ जाती है। वो जीन केवल और केवल छिपकने में पाया जाता है। इसी प्रकार सबके अलग अलग जीन होते हैं जैसे कि गिरगिट के अंदर रंग बदलने में इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी इनफाइनाइट एनर्जी होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। हमारे ब्रेन का केवल 5-10% हिस्सा ही काम करता है। अगर हम 100% ब्रेन करें तब हमारे ये सारे के सारे भाग अनलॉक हो जाएंगे जिसमें हमें छिपकली वाली जो मैंने आपको बताई जिस तरह से उसकी पूंछ कटकर वापस आ सकती है उसके जीन के अनुसार इसी प्रकार हम अपने ब्रेन से ही अपने उन हिस्सों को अनलॉक कर पाएंगे जिसकी वजह से वो केमिकल रिलीज होंगे हमारी बॉडी में हम अपनी कटी उंगली को भी अपने ध्यान के इच्छा अनुसार वापस ला सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम अपने हाथों का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारी 5 उंगलियाँ हैं तो हम ध्यान के अनुसार उनकी 6 उंगलियाँ कर सकते हैं हम उनकी 1 उंगली बना सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारे टिश्यू हैं जो हमारे तत्व हैं हमारी त्वचा के अंदर छोटे छोटे जो भी हमारे टिश्यू होते हैं उनकी आकार निश्चित होता है आम मनुष्य में। लेकिन जब वो बढ़ने लगते हैं हमारे सेल्स हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है तो वो सेल्स का आकार हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। जिस प्रकार एक एटम का द्रव्यमान निश्चित इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमता है हम मानव निर्मित एटम बॉम्ब या किसी और चीज़ से उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं जिसकी वजह से विस्फोट होता है। इसी प्रकार हम अपने ब्रेन में अपनी बॉडी के अंदर भी उन सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम अपने अनुसार इसके अंदर 9, 10, 11 कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब एटम चेंज हो जाएगा तो एटम से बने अणु भी चेंज हो जाएंगे और पूरे के पूरे टिश्यू की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। टिश्यू की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो मानव के शरीर की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी। मानव अपने आप को सम्मानित कर सकता है बढ़ा भी कर सकता है। पुराणों में दर्शाया गया है कि ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं विष्णु जी के अनंत हाथ हैं हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा तथा छोटा कर सकते थे। ये सभी माइंड की एक्टिवनेस पर डिपेंड करते हैं। आपका 100% माइंड अगर अनलॉक हो जाता है तब आप अपने शरीर को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। अपने शरीर को किसी भी रूप में ढालने की प्रक्रिया ध्यान से उत्पन्न होती है जिसको भोलेनाथ वर्षों से सदियों से तथा युगों से करते हुए उन्होंने अपने रूप को इतना सम्मानित कर लिया है, इतना छोटा बना लिया है, इतना ज़्यादा सिकोड़ लिया है कि हमें आम आँखों से उसे देखना भी असंभव है। वो एक सूक्ष्म एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। मेरे दोस्तों, आपने फिल्म लूसी तो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आज ही आप जाके देखिए, आपको समझ आएगा कि जब 100% माइंड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है। वैसे तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि ये आप इसको सच मानो, मगर ये फिक्शन मूवी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपको देखना चाहिए। ये आइडिया, ये मूवी आपको बताएगी कि किस तरह से हम साइंस के स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, हमारे ही वश में सब कुछ होता है। तो प्रभु भोलेनाथ ने अपने माइंड का 100% यूज़ करके अपने प्रतिशेष में बना लिया और अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे ब्रह्मांड में। इसीलिए तो कहते हैं भगवान प्रजा। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ पूरे ब्रह्मांड में। जब हम अपने ध्यान के अनुसार ही अपने काम को करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, मैं आपको बताऊंगा वो बात, जब अपने शरीर का त्याग किया था, उन्होंने 8 से 9 घंटे कंटिन्यूसली मेडिटेशन किया था। उससे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना देह त्याग किया था। उन्होंने अपने सिर के माध्यम से अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग किया। उन्होंने जान लिया था कि उनका शरीर वो नहीं है, उनका जो अस्तित्व है उनका शरीर नहीं है, उनका अस्तित्व वो आत्मा खुद है। उन्हें खुद का परम ज्ञान हो गया था, खुद से वो मिल चुके थे। जब वो आत्मा के रूप में कन्वर्ट हुए अपने शरीर का त्याग करके, तब वो भी खुद को जान रहे थे कि ये मेरा शरीर अपना है, ये जा सकते थे नहीं जा सकते थे और किसी और देह में वो एंटर हुए होंगे। इस तरह की घटनाएँ प्रचलित। तो इसी तरह से आप भी अपने शरीर को अपने आप से अलग कर सकते हैं तथा अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिस तरह से स्वयं भगवान भोलेनाथ ने किया। मानव के लिए संभव नहीं है, मैं कहता हूँ मानव के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें आसमान तक जाने तो हम आसमान तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हम चाहें कि चांद तक चले जाएँ तो कम से कम आसमान तक तो पहुँच ही सकते हैं। तो मेरा आज का उद्देश्य यही है, द पावर ऑफ मेडिटेशन। शुरुआत की थी हमने मेडिटेशन के छोटे छोटे पार्ट से, छोटे छोटे लाभ से, और अंत में आपको देखने को मिला कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है। रामायण काल में भी बहुत से ऋषियों ने पानी के अंदर रह के मेडिटेशन किया, सालों तक, सदियों तक मेडिटेशन किया, उसके बाद उन्होंने देह का त्याग किया और वो परम ध्यान को विलीन हो गया। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि ये नहीं है कि आज के समय में आपने सरकारी जॉब ले लिया, आपने अपना परिवार चला दिया और आपने पैसा बहुत कमा लिया, ये उपलब्धि नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं ऐसे, ये तो एक आम बात हो गई है, लेकिन असली उपलब्धि अपने आप को जानने में। तो जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, उस दिन आप परम पुरुष और सिद्ध पुरुष कहलाओगे। एक सिद्ध पुरुष ही सब कुछ करने के काबिल होता है। तो ध्यान दीजिए, हमें काबिल बनना है। तो आज का मैं सेशन अपना यही समाप्त करता हूँ। आप इंतज़ार करिए मेरे अगले एपिसोड का। आई होप आपको अच्छा लगेगा, इसे शेयर करते रहिए। और एक बात और, अगर आपको समझ में आया हो तो ध्यान शुरू करिए। द पावर ऑफ मेडिटेशन बहुत 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 बड़ा है, आप इसको सोचिए। राधे राधे।